بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت کرمانک 32, 33 اور 34 کی تلاوت اور انواد سنیں گے ایران کے پرکھیات قاری ابو القاسمی سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپا شیل اور دیاوان ہے۔ ہے پیغمبر کی پتنیوں، تم سامان محلاؤں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو، یدی تم اللہ کا ڈر رکھو تو کسی ویکتی سے کومل سور میں بات نہ کرو کہ وہ ویکتی جس کے من میں روگ ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور سدیو بھلی بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو اور پچھلے اگیانتا کے کال کی بھانتی بن ٹھن کر باہر نہ نکلو، نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ اور اس کے پیغمبر کا آگیا پالن کرو۔ ہے پیغمبر کے پریجنوں، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور تمہیں اس پرکار کا پوتر رکھے جس پرکار پوتر رہنے کا حق ہے۔ اور ہے پیغمبر کی پتنیوں، تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور تتو درشتا کی جن باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھو کہ نشچے ہی اللہ اتینت سوکشم درشی اور خبر رکھنے والا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، ہمارا پرسارن آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ برابر 9620 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ آج منگلوار ہے، اسفند کی 9، شابان کی 7 اور فروری کی 28 تاریخ۔ اس سبھا میں پرسارت ہونے والے کاریکرم اس پرکار ہیں۔ سب سے پہلے آپ سنیں گے وشو سماچار، اس کے بعد راجنیتک چرچا، اور اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے قرآنی قصے، اور انتم کاریکرم ہوگا افغانستان سنکٹ کے سمادھان۔ شروتاؤ، تازہ اور وسط خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.ir/hi۔ آپ سید میسم اور مریم مہردادی سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایران کے ودیش منتری نے کہا کہ پرمانو سمجھوتے کی ورتمان استھتی کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے۔ آئی آر آئی بی کے پرمکھ نے کہا ہے کہ پترکار کی سب سے بڑی ذمہ داری موت سے نہیں ڈرنا ہے۔ ایران نے فلسطینیوں کے گھروں کو آگ کے حوالے کرنے کی نندا کی ہے۔ سپریم کورٹ سے ضمانت کی عرضی خارج ہونے کے بعد سیسودیا اور جین نے منتری پدوں سے استعفی دے دیا ہے۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ پرماڑو سمجھوتے کی ورتمان استھتی کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے۔ منگلوار کو جنیوا میں سنیکت راشٹر نرستیکرن سمیلن میں امیر عبداللہیان نے کہا، پرماڑو سمجھوتے میں جن مدوں کا سمادھان نہیں نکل سکا ہے ان کی آسانی سے سمیکشا کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سبھی پکش بنا کسی پور شرط کے اور وارتا کے دوران بننے والی سہمتی کے دائرے میں قدم آگے بڑھائیں گے تو پرماڑو سمجھوتے کو لے کر انتم قدم آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ ایران پرماڑو وارتا کو انتیم روپ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن امریکہ کو چاہیے کہ وہ اچھا شکتی دکھائے اور اس راستے میں رکاوٹیں ڈالنا بند کر دے۔ ایران کے ودیش منتری نے روس یوکرین یدھ کے بارے میں کہا کہ تہران اس یدھ میں پوری طرح سے نشپکش ہے اور ترنت اس یدھ کو سماپت کرنے اور موجودہ سمسیا کے شانتیپورن سمادھان پر بل دیتا ہے۔
تہران میں سوموار کو میڈیا کے شہیدوں کی یاد میں کاریکرم آیوجت کیا گیا۔ آئی آر آئی بی کے انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر میں آیوجت اس کاریکرم میں ایران، عراق، یمن، سیریا، افغانستان، لبنان اور فلسطین کے شہید میڈیا کرمیوں کے پریجنوں نے بھی بھاگ لیا۔ वर्तमान समय में प्रतिरोधक गुटों को पश्चिमी एशिया में बहुत प्रभावी गुटों की दृष्टि से देखा जा रहा है। ये प्रतिरोधक गुट अपनी सक्रियता वाले देशों में सैन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी भागीदारी करते हैं। ये गुट आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष और अवैध जैनी शासन के अत्याचारों के मुकाबले में सबसे आगे रहते हैं। ये प्रतिरोधी गुट वर्चस्ववादियों के षड्यंत्रों को सार्वजनिक करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को उचित ढंग से निभा रहे हैं। पिछले एक दशक के दौरान जब पश्चिमी एशिया में आतंकी गुट अपनी हिंसक एवं आतंकी कार्रवाइयों में लिप्त थे, उस समय इन प्रतिरोधी गुटों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ चुकी थी। पश्चिमी एशिया में सक्रिय आतंकी गुटों को अरब शासकों, पश्चिमी शक्तियों और अवैध ज़ायनी शासन का खुला समर्थन हासिल था, जो आज भी बाकी है। ये सारे के सारे आतंकी गुट पूरी तरह से प्रतिरोध गुटों के मुकाबले में थे। वास्तव में प्रतिरोधक संचार माध्यमों ने इसे एक दशक के दौरान इन विध्वंसक गुटों की वास्तविकता और उनके षड्यंत्रों को लोगों के सामने खोल कर रख दिया। इस प्रकार से एक तरह से आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में प्रतिरोधक संचार माध्यम ने प्रतिरोधक गुटों के साथ योगदान किया। इन्होंने जहां पर शत्रु के षड्यंत्रों से पर्दा उठाया, वहीं पर उसके नर्म युद्ध का भी डटकर मुकाबला किया। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि प्रतिरोधी संचार माध्यम ने नर्म युद्ध के मुकाबले में भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अवैध ज़ायोनी बस्तियों में बसने वाले ज़ायोनियों द्वारा नाबलूस के आसपास फिलिस्तीनियों के घरों को आग लगाने की कड़ी निंदा की है। गौरतलब है कि रविवार को सैकड़ों ज़ायोनियों ने वेस्ट बैंक स्थित वारा गांव में फिलिस्तीनियों के घरों पर धावा बोल दिया था और उन्हें आग के हवाले कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने मंगलवार को एक बयान जारी करके कहा कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ ज़ायोनी शासन और ज़ायोनी नागरिकों की आतंकवादी कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन विश्व समुदाय चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाले ज़ायोनी शासन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की अपील करते हुए कहा कि अगर विश्व समुदाय खामोश रहेगा तो यह अत्याचारी शासन दिन प्रतिदिन अपने अत्याचारों में इजाफा करता रहेगा।
फिलिस्तीनी क्षेत्र में ज़ायोनी सैनिकों की ओर से की गई हिंसा की राष्ट्रसंघ ने निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि जॉर्डन नदी के पश्चिमी क्षेत्र में की गई हिंसा स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रसंघ उसकी निंदा करता है। राष्ट्रसंघ के प्रवक्ता ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि कॉलोनी निर्माण का काम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि ये काम दो देशों वाले समाधान को प्राप्त करने के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवक्ता के कथनानुसार इस सप्ताह के अंत में जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर हम जिस हिंसा के साक्षी रहे हैं वो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं। स्टीफन दुजारिक ने ये भी कहा कि हम दूसरों से भी यही कहते हैं कि वे लोग भी इस हिंसा की निंदा करें। उल्लेखनीय है कि ज़ायोनी सैनिकों ने बुधवार को नाबलस नगर के प्राचीन क्षेत्र में हमला करके कम से कम 11 लोगों को शहीद कर दिया था। इस घटना में कम से कम 102 लोग घायल हुए थे।
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। 2021 में लाई गई शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में सीबीआई ने रविवार को घंटों चली पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जून 2022 को केजरीवाल सरकार के ताकतवर मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कोर्ट से जमानत की अपील की थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। सिसोदिया आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार में कितने शक्तिशाली हैं, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 33 में से 18 सरकारी विभाग का कामकाज मनोज सिसोदिया ही देखते हैं।
मिस्र के राष्ट्रपति का कहना है कि सीरिया के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों पर हमें गर्व है। मिस्र के विदेश मंत्री ने सीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करके मिस्री राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह सीसी का संदेश बशार असद को दिया। سامع شکری نے سوموار کو سیریا کی راجدھانی دمشق میں مصری راشٹرپتی کا سندیش اسد کے حوالے کیا۔ اپنے سندیش میں مصر کے راشٹرپتی نے سیریا کے بھوکمپ پیڑتوں کے ہر طرح سے سہایتا کا بھروسہ دلایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیریا کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو ادھک سے ادھک مضبوط کرنے کے پکش میں ہیں۔ مصر کے ودیش منتری کی 12 سال کے بعد مصر کے کسی ودیش منتری کی یہ سیریا کی یاترا تھی۔ مصری ودیش منتری کا کہنا تھا کہ قاہرہ ان کے ساتھ ہے جو سیریا کی سہایتا کرنا چاہتے ہیں۔ 12 ورشوں کے بعد مصر کے ودیش منتری کی سیریا یاترا سے ایک دن پہلے رویوار کو عراق، یو اے ای، جارڈن، فلسطینی، لیبیا اور مصر کے سنسد سبھاپتیوں نے عمان تھا لبنان کے ششٹمنڈل کے ساتھ سیریا کی یاترا کی تھی۔
پاکستان کے پورو پردھان منتری اور پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے پرمکھ عمران خان کو عدالت نے اگرم ضمانت دے دی ہے۔ اسلام آباد میں 2 الگ الگ عدالتوں نے پرتبندھت فنڈنگ اور چناؤ آیوگ کے فیصلے کے خلاف ویرودھ پردرشن کے معاملوں میں عمران خان کی ضمانت یاچیکا سویکار کر لی۔ عمران خان منگلوار کو اسلام آباد کے نیائک پریسر میں سنوائی میں پیش ہونے کے لیے لاہور سے اسلام آباد پہنچے تھے۔ ان کے ساتھ بڑی سنکھیا میں ان کی پارٹی کے کاریکرتا بھی نیائک پریسر میں موجود تھے۔ حالانکہ اس موقع پر سرکشا کے انتظام کیے گئے تھے، لیکن پارٹی کاریکرتا سرکشا گھیرا توڑ کر نیائک پریسر کے بھون میں گھس گئے۔
امریکہ کے دکشنی کیلیفورنیا میں بھاری برف باری اور سرد طوفان سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور ایک بڑے علاقے میں بجلی گل ہو گئی ہے۔ یہ طوفان اب پورو دشا کی اور بڑھ گیا ہے، جسے اس علاقے میں بونڈر آیا ہے اور ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں۔ سوموار کو اوکلاہوما، کنساس، مسوری اور ٹیکساس کا موسم بہت خراب رہا ہے۔ ان علاقوں میں کئی گھروں کے برباد ہونے اور بجلی کے تار گرنے کی خبریں آئی ہیں، اس سے ہزاروں لوگ بنا بجلی کے رہنے پر مجبور ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گانتانت ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
شروط راجنیتک چرچا کے دینک کاریہ میں محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔ ودیش منتری نے ایران اور فن لینڈ کے سمبندھوں کو ایتہاسک اور پرسپر سمان کے آدھار پر قرار دیا اور کہا کہ دونوں دیشوں کے سمبندھ وکست ہو رہے ہیں۔ تہران میں سوموار کو میڈیا کے شہیدوں کی یاد میں ایک کاریہ آیوجت کیا گیا۔ IRIB کے انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر میں آیوجت اس کاریہ میں ایران، عراق، یمن، سیریا، افغانستان، لبنان اور فلسطین کے شہید میڈیا کرمیوں کے پریجنوں نے بھی بھاگ لیا۔ ورتمان سمے میں پرتیرودھک گٹوں کو پشچمی میڈیا میں بہت پربھاوی گٹوں کی درشت دیکھا جا رہا ہے۔ دلی کے اپ مکھیہ منتری منیش سسودیا کی گرفتاری راجنیتک حلقوں میں چرچا کا وشے بن گئی ہے۔ منیش سسودیا نے شراب گھوٹالے میں اپنی گرفتاری اور CBI کے پوچھ تاچھ کے طریقوں کو اچتم نیالے میں چنوتی دی ہے۔ विदेश मंत्री ने ईरान और फिनलैंड के संबंधों को ऐतिहासिक और परस्पर सम्मान के आधार पर करार दिया और कहा कि दोनों देशों के संबंध विकसित हो रहे हैं। विदेश मंत्री ने यूक्रेन में युद्ध विराम की स्थापना के संबंध में इस्लामी गणतंत्र ईरान के अच्छे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि हम नाटो के विस्तार और यूक्रेन में युद्ध के जारी रहने और क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालने के खिलाफ हैं। साथ ही अख्तर अब्बास।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि तेहरान नेटो के विस्तार और यूक्रेन युद्ध के जारी रहने के खिलाफ है। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने फिनलैंड के अपने समकक्ष से मुलाकात में कहा कि हम नेटो के विस्तार और यूक्रेन में युद्ध जारी रहने तथा देशों की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरे पैदा किए जाने के खिलाफ हैं। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने जिनेवा की यात्रा के दौरान पहली द्विपक्षीय बैठक के तहत फिनलैंड के विदेश मंत्री पेक्का हैविस्टो से मुलाकात की और कहा कि हम नेटो के विस्तार और यूक्रेन में युद्ध जारी रहने के खिलाफ हैं। इस मुलाकात में द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रुचि के विषयों, यूक्रेन की ताजा स्थिति, विशेष रूप से प्रतिबंधों को हटाने वाली वार्ता की नवीनतम स्थिति के बारे में चर्चा की गई। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने न्यूयॉर्क और तेहरान में अपने फिनिश समकक्ष के साथ पिछली वार्ताओं और टेलीफोनी बातचीत को अच्छा करार दिया और इन बैठकों और बातचीत पर संतोष व्यक्त किया और इन राजनयिक परामर्शों को निरंतरता से जारी रखने का स्वागत किया। विदेश मंत्री ने ईरान और फिनलैंड के संबंधों को ऐतिहासिक और परस्पर सम्मान के आधार पर करार दिया और कहा कि दोनों देशों के संबंध विकसित हो रहे हैं। विदेश मंत्री ने यूक्रेन में युद्ध विराम की स्थापना के संबंध में इस्लामी गणतंत्र ईरान के अच्छे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि हम नेटो के विस्तार और यूक्रेन में युद्ध के जारी रहने तथा देशों की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालने के खिलाफ हैं। यूक्रेन युद्ध में उपयोग के लिए रूस को ईरानी ड्रोन के कथित निर्यात के संबंध में अवास्तविक दावों का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्री ने दोनों देशों की तकनीकी और विशेषज्ञ टीमों के बीच हुई चर्चा और उसके परिणामों की ओर इशारा किया और कहा कि अब तक इस दावे के बारे में ईरानी पक्ष को कोई विश्वसनीय दस्तावेज नहीं भेजा गया है और इस्लामी गणतंत्र ईरान दोनों देशों की तकनीकी और विशेषज्ञ टीमों के बीच दूसरे दौर की वार्ता आयोजित करने के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के उप महानिदेशक की हालिया तेहरान यात्रा और दोनों पक्षों के बीच होने वाली अच्छी बातचीत का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्री ने निकट भविष्य में ग्रोसी की तेहरान यात्रा के लिए होने वाले समझौते की सूचना दी और उम्मीद जताई है कि यदि एजेंसी पर राजनीतिक दबाव से बचा जाता है तो तकनीकी मुद्दों पर अच्छी प्रगति हो सकती है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
वर्तमान समय में प्रतिरोधक गुटों को पश्चिमी मीडिया में बहुत प्रभावी गुटों की दृष्टि से देखा जा रहा है। ये प्रतिरोधक गुट अपनी सक्रियता वाले देशों में सैन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी भागीदारी करते हैं। साथ ही कायम रिजवी।
तेहरान में सोमवार को मीडिया के शहीदों की याद में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। IRIB के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में ईरान, इराक, यमन, सीरिया, अफगानिस्तान, लेबनान और फिलिस्तीन के शहीद मीडिया कर्मियों के परिजनों ने भी भाग लिया। वर्तमान समय में प्रतिरोधक गुटों को पश्चिमी एशिया में बहुत प्रभावी गुटों की दृष्टि से देखा जा रहा है। ये प्रतिरोधक गुट अपनी सक्रियता वाले देशों में सैन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी भागीदारी करते हैं। ये गुट आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष और अवैध ज़ायोनी शासन के अत्याचारों के मुकाबले में आगे आगे रहते हैं। ये प्रतिरोधी गुट वर्चस्ववादियों के षड्यंत्रों को सार्वजनिक करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को उचित ढंग से निभा रहे हैं। पिछले एक दशक के दौरान जब पश्चिमी एशिया में आतंकी गुट अपनी हिंसक एवं आतंकवादी कार्रवाइयों में लिप्त थे, उस समय इन प्रतिरोधी गुटों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ चुकी थी। पश्चिमी एशिया में सक्रिय आतंकी गुटों को अरब शासकों, पश्चिमी शक्तियों और अवैध ज़ायोनी शासन का खुला समर्थन हासिल था, जो आज भी बाकी है। ये सारे के सारे आतंकी गुट पूरी तरह से प्रतिरोधक गुटों के मुकाबले में थे। वास्तव में प्रतिरोधक संचार माध्यमों ने इस एक दशक के दौरान इन विध्वंसक गुटों की वास्तविकता और उनके षड्यंत्रों को लोगों के सामने खोल कर रख दिया। इस प्रकार से एक तरह से आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में प्रतिरोधक संचार माध्यमों ने प्रतिरोधक गुटों के साथ योगदान किया है। इन्होंने जहां पर शत्रु के षड्यंत्रों से पर्दा उठाया, वहीं पर उनके नर्म युद्ध का भी डटकर मुकाबला किया। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रतिरोधी संचार माध्यमों ने नर्म युद्ध के मुकाबले में भी उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसी संदर्भ में ईरान के रेडियो और टेलीविजन सेंटर IRIB के प्रमुख पैमान जिबिल्ली ने कहा है कि नर्म युद्ध में शत्रु कभी भी हथियारों का प्रयोग नहीं करता, उसमें वो विचारों और दृष्टिकोणों को बदलने के प्रयास करता रहता है। वो वास्तविकता को बदलते हुए हमें गुमराह करना चाहता है। उन्होंने कहा कि प्रतिरोधक मीडिया के शहीदों ने दोनों प्रकार के युद्धों में शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया है। यहाँ पर एक ध्यान योग्य विषय ये भी है कि अधिकांश संचार माध्यम बड़ी शक्तियों के समर्थन के कारण शांतिपूर्ण एवं अच्छे माहौल में अपना काम करते हैं, जबकि प्रतिरोधक मीडिया हमेशा ही चुनौतियों और खतरों से भरे वातावरण में अपना काम करता है। ऐसे में उनकी जान के लिए हमेशा ही खतरे बने रहते हैं। दुश्मनों की हमेशा उन पर नजर रहती है और वे हमेशा ही उन पर घात लगाकर हमले करने की कोशिशों में रहते हैं। इसका कारण यह है कि उनको पता है कि वास्तविकताओं को उजागर करने के वे लोग प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में पैमान जिबिल्ली ने कहा कि IRIB की विदेशी सेवा के संचार माध्यमों ने इस मार्ग में 10 से अधिक शहीद दिए हैं। उनका कहना था कि पत्रकारों की सबसे बड़ी विशेषता मौत से न डरना है।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी और CBI के पूछताछ के तरीकों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय तैयार हो गया है।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी और CBI जांच के तरीके को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। सिसोदिया की याचिका पर उच्चतम न्यायालय शीघ्र सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में CBI ने रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने सिसोदिया को 5 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। मनीष सिसोदिया से CBI ने पूछताछ शुरू कर दी है और ऐसे सवाल फिर से पूछे जा रहे हैं जिनका जवाब देने से वे पहले बचते रहे हैं। CBI ने अदालत में दलील दी थी कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। सिसोदिया का कहना है कि जब वे CBI जांच में सहयोग कर रहे थे तो उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई? मनीष सिसोदिया के पास 18 विभागों का प्रभार है जिनमें वित्त विभाग भी शामिल है और दिल्ली सरकार अपना आर्थिक बजट भी पेश करने वाली है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया है और कहा है कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले सिसोदिया को भाजपा झूठे आरोपों में फंसा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा,
भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग शामिल हो जाते हैं वो दूध के धुले राजा हरिश्चंद हो जाते हैं। मैं नाम लेना चाहता हूँ, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले की बुकलेट BJP ने जारी की थी, हेमंत विश्व शर्मा इनका मुख्यमंत्री बन जाता है। येदुरप्पा माइनिंग का घोटाला करता है, वो इनका मुख्यमंत्री बन जाता है। शिवराज सिंह व्यापम का घोटाला करते हैं, वो इनके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। पूरे देश में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके ये विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं।
उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है। कांग्रेस के अधिकतर नेता इस मुद्दे पर कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोप में पहले से जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का मुख्यमंत्री केजरीवाल को बचाव नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट संदेश में सिसोदिया की गिरफ्तारी को गलत बताया है, हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति या मामले का उल्लेख नहीं किया है। कांग्रेस भाजपा के अतिरिक्त आम आदमी पार्टी को भी अपना घोर विरोधी मानती है, जिसने कांग्रेस की 15 साल की सत्ता को समाप्त कर इसे विधानसभा से भी बाहर कर दिया है। शमशाद कासमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
तो श्रोतो, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
श्रोताओं, आप प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम कुरानी किस्से।
कुरानी किस्से।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि पवित्र कुरान के सूरह अहज़ाब की 26वीं और 27वीं आयतें कब नाजिल हुई थी। सऊदी अरब के पवित्र नगर मदीना में बनी नुज़ैर, बनी कैनुका और बनी कुरैज़ा नाम के यहूदियों के तीन कबीले रहते थे। इन कबीलों ने अपनी रक्षा के लिए मजबूत दुर्गों का निर्माण कर रखा था और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी और वे व्यापार करते थे। पहले वे दूसरे स्थान पर रहते थे, परंतु जब उन्हें अपनी किताब तौरात से ये पता चला और उन्होंने ये बात यहूदी विद्वानों और धर्मगुरुओं से सुना कि अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म अरब प्रायद्वीप में मदीना या उसके पास के इलाके में होगा, तो वे पलायन करके मदीना आकर रहने लगे।
यहूदियों की दिली तमन्ना थी कि अंतिम पैगंबर उनमें से हो और हम सब उस पर ईमान लाएंगे और उसका अनुसरण करेंगे। रोचक बात यह है कि यहूदी पैगंबर इस्लाम की निशानियों से इस तरह अवगत थे जैसे अपने बच्चों से। यहूदी अंतिम पैगंबर की प्रतीक्षा में थे और मदीना के दूसरे लोगों को भी अंतिम पैगंबर के आगमन की शुभ सूचना देते थे। बहरहाल पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म मक्का में अरब के कुरैश कबीले में हुआ। ये बात यहूदियों को पसंद नहीं आई कि पैगंबर इस्लाम का जन्म मक्का में और वो भी अरब कबीले में हो गया। यही नहीं, जब यहूदियों ने देखा कि इस्लाम उनके अवैध हितों की दिशा में सबसे बड़ी रुकावट है, तो उनमें से अधिकांश न केवल पैगंबर इस्लाम पर ईमान नहीं लाए बल्कि इस्लाम के मुकाबले में खड़े हो गए।
पूरे इतिहास में अधिकांश यहूदी कौम की एक स्पष्ट विशेषता वचनबद्ध न रहना रही है, यानी वादा खिलाफी अधिकांश यहूदियों का इतिहास रहा है। महान ईश्वर ने तूर नामक पर्वत पर यहूदियों को आदेश दिया कि वे तौरात की शिक्षाओं पर अमल करें और यहूदी भी प्रतिबद्ध हुए कि वे तौरात पर अमल करेंगे, परंतु कुछ ही समय के बाद उन्होंने अपने वचन को तोड़ दिया और महान ईश्वर के आदेश की उपेक्षा अनदेखी कर दी। इसी प्रकार यहूदियों से वचन लिया गया था कि तौरात में जिस पैगंबर के आगमन की शुभ सूचना दी गई है उस पर वे ईमान लाएंगे और उसके आदेशों का पालन करेंगे, परंतु यहूदियों ने इस वचन को भी तोड़ दिया। पैगंबर इस्लाम के आगमन के बाद वे इस बात को भूल ही गए कि उन्होंने पैगंबर इस्लाम के बारे में कोई वचन दिया है।
जब पैगंबर इस्लाम ने मक्का से मदीना पलायन किया तो तीनों यहूदी कबीले बनी नुज़ैर, बनी कुरैज़ा और बनी कैनुका ने पैगंबर इस्लाम से समझौता किया था कि उनके दुश्मनों के साथ किसी प्रकार का न तो सहयोग करेंगे और न ही पैगंबर इस्लाम की जासूसी करेंगे और मुसलमानों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे। मगर जब भी यहूदियों को मौका मिलता था तो पैगंबर इस्लाम के दुश्मनों के साथ सहयोग करने और उनके दुश्मनों के लिए जासूसी करने में संकोच से काम نہیں لیتے تھے۔ ہر بار یہودیوں کو منہ کی کھانی پڑی اور انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد یہودیوں کا بنی قینوقا قبیلہ سیریا کی راجدھانی دمشق کے دکشن میں استھت عزرعاد شہر چلا گیا، جبکہ بنی نوزیر قبیلے کے کچھ یہودی خیبر کی اور چلے گئے اور کچھ شام ارتھات ورتمان سیریا کی اور چلے گئے۔
جنگ خندق سے پہلے بنی نظیر قبیلے کے یہودیوں کا مکھیا حیہ بن اختب نظری بنی قرضہ قبیلے کے مکھیا کعب بن اسد کے پاس گیا تاکہ جنگ خندق میں اسے اپنے ساتھ کر لے، جبکہ کعب بن اسد پیغمبر اسلام سے شانتی سمجھوتا کر چکا تھا۔ اس نے جب اختب کی آواز سنی تو قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس پر اختب کو بڑا غصہ آیا اور اس نے چلا کر کہا، ہے کعب دروازہ کھولو، مگر کعب نے اس کی بات نہ سنی اور کہا، اختب تم پر دھکار ہو، کیوں تیرے لیے دروازہ کھولوں جبکہ تو جانتا ہے کہ تو برا آدمی ہے، میں نے حضرت محمد سے شانتی سمجھوتا کر رکھا ہے، میں بالکل اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تیری وجہ سے سمجھوتا توڑ دوں، پرنتو اختب نے بہت آگرہ کیا کہ اختب دروازہ کھول دے، میں تیرے لیے دنیا کی عزت لے کر آیا ہوں، میں نے قریش کے قبیلوں کو اپنے ساتھ کر لیا ہے اور ان سب نے کہا ہے کہ جب تک محمد کو ختم نہیں کر دیں گے سکون کی سانس نہیں لیں گے۔ یہاں تک کہ کعب بھی اختب کی باتوں کے چھلاوا میں آ گیا اور وہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔
جب پیغمبر اسلام کو پتا چلا کہ کعب نے ان کے ساتھ سمجھوتا توڑ دیا ہے تو انہوں نے اس معاملے کی چھان بین کی ذمہ داری سعد بن معاذ اور سعد بن عباد کو سونپ دی۔ پیغمبر اسلام اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اس پرکار کے خطرے کی اندیکھی نہیں کی جا سکتی اور اس خطرے کی اندیکھی کرنے کا مطلب مدینہ کے مسلمانوں کے لیے سمسیا پیدا کرنا۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے وشواسگھات کرنے والی قوم کو آسانی سے نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ پرنتو جب پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ مدینہ کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے تو انہوں نے سنیم سے کام لیا اور اچت اوسر کی پرتیکشا میں کعب کے خلاف کچھ نہیں کیا اور مہان ایشور کی مدد سے جنگ خندق میں مسلمانوں کو وجے ملی اور کافروں کی سینا کو بڑی اپمان جنک پراجے کا سامنا ہوا اور منافقوں کو بھی مکھی کھانی پڑی۔
یہودیوں کا جو بنی قریظہ نام کا قبیلہ مدینے میں تھا اس کے لوگ بھی کافروں کی سینا میں شامل تھے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو اس قبیلے کے لوگ بھی اپنے قبیلے کے پاس لوٹ گئے اور نشچنت ہو کر اپنے دنچریا کے کاموں میں لگ گئے۔ پیغمبر اسلام بھی صاف صفائی کا کام کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، ہے پیغمبر، آپ نے ہتھیار زمین پر رکھ دیا جبکہ فرشتے جنگ اور مدد کے لیے تیار ہیں، اب آپ بنی قریظہ قبیلے کی اور جائیں اور اس کا کام ختم کریں۔ مہانیشور کا آدیش آنے کے بعد مسلمانوں نے بنی قریظہ کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا جو 25 دنوں تک لمبا کھینچا۔ یہودی اس دوران مسلمانوں کی اور تیر پھینکتے تھے اور انہیں برا بھلا کہتے تھے، پرنتو مسلمان ڈٹے رہے اور مہان ایشور نے بھی یہودیوں کے دل میں بھے ڈال دیا تھا۔ اس دوران بنی قریظہ قبیلے کے یہودیوں کے مکھیا کعب بن اسد نے قلعے کے اندر موجود یہودیوں سے کہا، ہے یہودی قوم، تم لوگ جو دیکھ رہے ہو وہ مصیبت ہے، اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے میں تمہیں تین راستے بتاتا ہوں، جسے تم مجھے سمجھو اس پر عمل کرو۔ ان سب نے پوچھا کہ تین راستے کیا ہیں۔ اس پر کعب بن اسد نے کہا، میرا پہلا سجھاؤ یہ ہے کہ آؤ اس آدمی کی بیعت کرتے اور اس کے دھرم کو سویکار کر لیتے ہیں اور تم لوگوں پر یہ بات پوری طرح سپشٹ ہو چکی ہے کہ وہ پیغمبر ہے اور یہ وہی پیغمبر ہے جس کا نام تم لوگوں نے تورات میں پڑھا ہے۔ اگر یہ کام تم نے کیا تو ہماری جان، مال، عزت اور ہماری مہیلائیں سب سرکشت رہیں گی اور ہمارے اسلام دھرم سویکار کرنے کا مطلب ہم نے تورات پر عمل کیا۔ پر قلعے کے اندر موجود یہودیوں نے کہا، ہم یہودی ہی رہیں گے और अपने धर्म को किसी धर्म से नहीं बदलेंगे। इसके बाद काब बिन असद ने कहा, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि आओ अपने बीवी बच्चों की हत्या करके अपने हाथ से कर देते हैं और माल भी नष्ट कर देते हैं, ताकि निश्चिंत होकर युद्ध करें, और अगर जिंदा रहे और हम जीत गए तो बीवी बच्चे वाला होना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस पर दुर्ग के अंदर मौजूद यहूदियों ने कहा, क्या कहते हो, इन मुट्ठी भर बीवी बच्चों की हत्या हम अपने हाथ से कर दें? बीवी बच्चों के बिना जीने का क्या फायदा है? ये कार्य कभी भी हम अंजाम नहीं देंगे। इसके बाद काब बिन असद ने कहा, मेरा तीसरा सुझाव यह है कि आज शनिवार की रात है और मोहम्मद और उनके अनुयायी अच्छी तरह जानते हैं कि हम शनिवार की रात युद्ध नहीं करते। आओ इस मौके का फायदा उठाओ और मोहम्मद और उनके अनुयायियों पर हमला कर देते हैं।
इस पर किले के अंदर मौजूद यहूदियों ने कहा कि शनिवार की रात की जो इज्जत है उसे हम खत्म कर दें, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने किया है, और वे खत्म हो गए, हम कदापि ऐसा नहीं करेंगे। जब काब बिन असद ने देखा कि हमारी तीनों बातों में से कोई बात कबूल नहीं की गई, तो वो गुस्से में आकर कहता है, तुम लोग कितने मूर्ख और बुद्धिहीन हो। मैं समझता हूँ कि तुम लोग जब से इस दुनिया में आए हो तब से कभी भी बुद्धि से काम नहीं लिया है।
बहरहाल महान ईश्वर की कृपा से बनी कुरैजा के किले पर मुसलमानों का कब्जा हो गया और उनमें से कुछ ने मुसलमानों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि कुछ मारे गए। इस सफलता के बाद मदीना से यहूदियों का लगभग सफाया हो गया और महान ईश्वर ने पवित्र कुरान के सूरह अहज़ाब की 26वीं और 27वीं आयत नाजिल की। इस भुलाई न जाने वाली घटना को महान ईश्वर बड़ी नेमत के रूप में याद करता है। इन आयतों में महान ईश्वर कहता है, जो अहले किताब थे यानी यहूदी, उन्हें अल्लाह ने उनके दुर्गों से बाहर निकाला और अल्लाह ने उनके दिलों में रोब डाल दिया। उनमें से तुम एक गिरोह की हत्या करते थे और दूसरे गिरोह को बंदी बनाते थे और तुम्हें उनकी जमीनों, घरों और मालों का मालिक बना दिया और तुम्हें उस जमीन का मालिक बना दिया जिस पर तुमने कदम नहीं रखा था, और अल्लाह हर कार्य करने पर पूर्ण रूप से सक्षम है।
दोस्तों, यहाँ एक बिंदु को बयान करना जरूरी है और वो यह है कि मुसलमान को यानी महान ईश्वर पर आस्था रखने वाले को महान ईश्वर की ताकत पर भरोसा करना चाहिए और दुश्मन की संख्या और उसके भौतिक संसाधनों व संभावनाओं से लेश मात्र भी नहीं डरना चाहिए। जंगे अहज़ाब यानी जंगे खंदक और दूसरी लगभग समस्त जंगों में मुसलमानों की संख्या और उनकी सैन्य तैयारी काफिरों और दुश्मनों के मुकाबले में बहुत कम थी, परंतु लगभग समस्त जंगों में विजय मुसलमानों को मिली। मुसलमानों को इस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए कि महान ईश्वर की मदद ही उनकी जीत के असल राज है। जिस तरह से काफिरों की हार की सबसे बड़ी वजह महान ईश्वर की मदद का न होना है, महान ईश्वर काफिरों की मदद नहीं करता है, वो मुसलमानों और मोमिनों की मदद करता है, और अगर उसकी मदद न होती तो इस्लाम और मुसलमानों का इतिहास कुछ और होता।
दोस्तों, यहाँ एक अन्य बिंदु को बयान करना जरूरी है और वो बिंदु ये है कि महान ईश्वर की मदद वहीं होगी जहाँ सच और हक होगा। अगर कोई मुसलमान असत्य पर हो तो वहाँ महान ईश्वर उसकी मदद नहीं करेगा। अतः इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इंसान जो कार्य कर रहा है वो सही है या गलत। अगर सही है तो महान ईश्वर से मदद की उम्मीद लगानी चाहिए, वरना नहीं।
तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
श्रोताओ प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम अफगानिस्तान संकट के समाधान।
अफगानिस्तान संकट के परिणाम।
दोस्तों, कार्यक्रम श्रृंखला अफगानिस्तान संकट के परिणाम की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और रवीश लेरी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, युद्ध और रक्तपात को हमेशा से बुरा माना गया है। यही कारण है कि किसी भी समाज या धर्म में युद्ध की अनुमति नहीं दी गई है। सभ्य समाजों में आपसी झगड़ों या देशों के बीच के युद्धों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। अगर किसी देश के लिए वास्तव में युद्ध करना अपरिहार्य हो तो ऐसे में उसको संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के साथ अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत ही कार्रवाई करनी होगी। वह देश इस संबंध में स्वेच्छा से कोई फैसला नहीं ले सकता। जिस प्रकार से अपरिहार्य स्थिति में राष्ट्र संघ की अनुमति से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ध्यान रखते हुए किसी देश के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, ठीक उसी प्रकार से किसी देश से अपने सैनिकों को भी सुनियोजित ढंग से निकाला जाना चाहिए।
ये बात अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विपरीत और गलत है कि जब चाहा कोई बहाना बनाकर किसी देश पर हमला कर दिया और जब जी में आया मुंह उठाकर वहां से निकल आए। ये काम इसलिए गलत है कि जहां से बिना बताए बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को निकाला जाएगा, उस स्थान या देश में उनके निकलने से अस्थिरता पैदा हो सकती है। अफगानिस्तान के साथ अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया। उसने सन 2001 को अपनी मर्जी से अफगानिस्तान पर हमला करके वहां व्यापक स्तर पर विनाश फैलाया और बाद में सन 2021 में बिना किसी पूर्व सूचना के उसने अफगानिस्तान से अपने सैनिक निकाल लिए।
जिस समय से अमेरिका ने स्वेच्छा से बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के अफगानिस्तान से अपने सैनिक बाहर निकाले हैं, इस देश में अस्थिरता और अशांति में वृद्धि हुई है। अफगानिस्तान की वो सेना को विदेशी विशेषकर अमरीकी सैनिकों की सहायता से तालिबान के विरुद्ध मोर्चा लिया करती थी, अब बेसहारा हो चुकी है। अफगानिस्तान में मादक पदार्थों का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। दाइश की हिंसक कार्रवाइयों में लगातार तेजी आ रही है। महंगाई और निर्धनता में हर दिन वृद्धि देखी जा रही है।
इन सारी समस्याओं को देखने के बावजूद अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिक बाहर निकाले और ये ऐलान किया कि अब हमें वहां पर रुकने या बाकी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि अफगानिस्तान पर हमले के समय अमेरिका ने इस देश में आतंकवाद और मादक पदार्थों के विरुद्ध संघर्ष की बात कही थी, जिसे उसने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। तालिबान ने जब ये स्थिति देखी कि अमेरिका बिना किसी जिम्मेदारी के अफगानिस्तान से वापस जा रहा है, तो उसने अपने हमले बढ़ा दिए और उसको अपने नियंत्रण में कर लिया।
ये बात निश्चित रूप में कही जा सकती है कि अफगानिस्तान के बारे में अमेरिका की स्ट्रेटेजी स्थिर है, जबकि वहां की सरकारें अपनी शैलियां बदलती रहती हैं। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति के काल में अफगानिस्तान पर हमला किया गया, जबकि वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन का कहना है कि उनके देश को अंततः युद्धों को समाप्त करना चाहिए, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। वे कहते हैं कि सैनिकों को हमें स्वदेश बुलाना चाहिए। बाइडेन ये भी कहते हैं कि हमें अपने संघर्ष का फोकस दाइश और अलकायदा पर ही करना चाहिए।
अगर तालिबान की बात की जाए तो इस संबंध में अमरीकी राष्ट्रपति बाइडन का मानना है कि तालिबान से वार्ता की जानी चाहिए। वे तालिबान को अमरीका का दुश्मन नहीं मानते हैं। इसी के साथ अमरीकी राष्ट्रपति ये भी मानते हैं कि अफगानिस्तान कभी भी एकजुट नहीं हो सकता, इसलिए इस बारे में प्रयास करना व्यर्थ है। बाइडन कह चुके हैं कि अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन की हत्या करने और अलकायदा को नष्ट करने के बाद हमने अफगानिस्तान में अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। इसके बावजूद बाइडन का कहना है कि हमने आतंकी धमकियों के संबंध में अपनी आंखें मूंद नहीं रखी हैं, क्योंकि आतंकवादी कभी भी संगठित हो सकते हैं।
दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन की नज़र में अब तालिबान बुरे नहीं हैं। जैसे ही तालिबान ने देखा कि अमरीकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इस देश में अपने हमले तेज़ कर दिए। ये घटनाएं सितंबर 2021 की हैं। अंततः 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी काबुल छोड़कर भाग गए। इस प्रकार से अफगानिस्तान में सरकार गिर गई। पहले अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ऐलान कर दिया था कि अफगानिस्तान से अमरीकी सैनिकों की वापसी 1 मई 2021 से आरंभ होगी, जो 11 सितंबर को अमरीका में होने वाली आतंकवादी कार्रवाई की बरसी के दिन समाप्त हो जाएगी।
हालांकि अमरीका द्वारा बताई गई तिथि के हिसाब से अफगानिस्तान से अमरीकी सैनिक बाहर नहीं निकाले जा सके। अफगानिस्तान के मामले में जाने माने टीकाकार पीर मोहम्मद मुल्ला जही कहते हैं कि धार्मिक आदेशों को लागू करने में इस समय तालिबान के बड़े नेता कड़ाई से काम नहीं कर रहे हैं और वे कुछ चीज़ों में नरमी दिखा रहे हैं, किंतु तालिबान के स्थानीय नेता इस बात को कदापि पसंद नहीं करेंगे और इस पर उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत ही कठोर हो सकती हैं। इस प्रकार का वातावरण दाएश और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के फलने फूलने का अवसर देगा। यह आतंकी संगठन मूल रूप में सत्ता के प्यासे हैं।
इन सारी बातों को देखते हुए अफगानिस्तान के परिवर्तनों के बारे में कोई भी पेशनगोई सही नहीं है। बहुत से राजनीतिक टीकाकारों का यही मानना है कि अफगानिस्तान में शांति पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि वहां पर एक समग्र सरकार का गठन हो जिसमें इस देश की सारी जातियों और समूहों को प्रतिनिधित्व हो। ऐसे में तालिबान इस देश में केंद्रीय स्तर की भूमिका निभाएं और वर्तमान संकट से बाहर आ जाएं। हालांकि तालिबान इस बारे में किसी की बात मान नहीं रहे हैं। वे इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि सरकार के मूल ढांचे में उनके अलावा कोई दूसरा शामिल हो।
तालिबान अब अफगानिस्तान में अपनी सरकार के गठन के इच्छुक हैं। हालांकि तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूढ़िवादी सोच वाला गुट माना जाता है। ऐसे में तालिबान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे धूमिल पड़ चुकी अपनी इस छवि को ठीक करें। ये उनकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस बारे में तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल मुजाहिद कहते हैं कि शत्रुता अब समाप्त हो चुकी है, हम बिना किसी दुश्मन के शांतिपूर्ण जीवन गुजारना चाहते हैं। तालिबान के प्रवक्ता का कहना था कि अब के बाद से अफगानिस्तान आतंकियों की शरणस्थली नहीं रहेगा, जो 1996 से 2001 तक था।
तालिबान के प्रवक्ता ये तो कह गए कि वे अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं, किंतु उन्हीं के ज़माने में इस देश में आए दिन बम विस्फोट और आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। वहां पर अल्पसंख्यकों विशेषकर शिया मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को हमले का निशाना बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त حالیہ دنوں میں تھوڑے تھوڑے انترال سے دھماکوں اور وسفوٹوں کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ ایسے میں طالبان کے ساتھ افغانستان کی سبھی قوموں اور گٹوں کو ایک ساتھ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا وکلپ نہیں ہے۔ یہی بات انتراشٹریہ سمودائے لمبے سمے سے طالبان سے کہتا آ رہا ہے۔
افغانستان پر 20 تک قبضہ جمانے کے بعد وہاں سے ایک دم سے واپس چلے جانے والے امریکہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پناہ افغانستان میں آئے گا اور وہاں کے پراکرتک سنسادھنوں کا اپنے حساب سے دوہن کرے گا۔ امریکہ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ افغانستان میں کتنے ادھک پراکرتک سنسادھن ہیں اور یہ دیش پشچمی ایشیا میں اس کے لیے کتنے مہتو کا سوامی ہیں۔ ان باتوں سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ امریکہ پناہ افغانستان میں واپس آئے گا۔
کچھ جانکار تو یہ کہتے ہیں کہ امریکی واسطے میں افغانستان سے پوری طرح سے گئے نہیں ہیں، حالانکہ ظاہری حساب سے انہوں نے اس دیش سے اپنے سینکوں کو نکال لیا ہے، کنتو وہ وہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ امریکی تھنک ٹینکس کا کہنا ہے کہ اگر یہ دیش افغانستان کو پوری طرح سے چھوڑ دے گا تو پھر امریکہ کے کڑے پرتسپردی ایران، چین اور روس یہاں پر اپنے پیر جما لیں گے۔ افغانستان کے پڑوسی دیش پاکستان کی گتیویدھیاں اور آتنکی گٹوں کی حالیہ کاروائیاں یہ بتاتی ہیں کہ امریکہ اس سمے افغانستان کو استھر کرنے کے پریاس کر رہا ہے۔ جب افغانستان استھر رہے گا تو پھر کسی بھی بہانے سے امریکہ اس دیش میں پھر سے آسانی سے آ سکتا ہے۔
افغانستان میں اشانتی پھیلا کر امریکہ اپنے پرتدوندی دیشوں ایران، چین اور روس کے لیے بھی سمسیائیں پیدا کر سکتا ہے۔ دھیان یوگیہ بات یہ ہے کہ کابل اور واشنگٹن کے بیچ ہونے والے شانتی سمجھوتے کی تاریخ 2024 میں سماپت ہو رہی ہے۔ اس بارے میں دوحا وارتا کے دوران امریکہ اور طالبان کے بیچ بات چیت ہوئی ہے، یہ بات اب تک گوپنیہ رکھی گئی ہے۔
دوستو، کاریکرم کا سمے یہیں سماپت ہوتا ہے، ہمیں انومتی دیجیے۔
श्रोताओं, यह प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।